मौत यानी वफात से दफन तक हम अपने इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और इसकी रोशनी में इंशाल्लाह एक बस गो थ्रू करने के स्टाइल में रहेंगे कि मौत क्या है और किस तरह से ये सारे हालात होंगे। देखिए कि मौत एक हकीकत है। हम सब अगर इस तस्वीर पे थोड़ा सा गौर करें, किसी बूढ़े के हाथ है ना, जब एक इंसान दुनिया में काम करने के काबिल नहीं रहता तो लोग उसको उठाकर कब्र में डालते हैं। ये देखिए जिस हाल में कफन में लिपटी हुई लाश है, हम सब का ये एक दिन अंजाम होने वाला है। और इधर ये देख लीजिए कि जो हम अपने हालात को देखते हैं, ये हमारा मुस्तकबिल का घर है, जिसको आप कहते हैं ना कि आप फ्यूचर में कहाँ होंगे, किस तरह रहेंगे, तो ये क्या है? ये कब्रिस्तान की जगह, और इतनी उदास कर देने वाली जगह, जो हकीकत में हम में से हर एक का घर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी अच्छे इलाके में मूव हो जाएं, लेकिन उस इलाके में मूव होने से पहले हमें एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। ये देखिए ये ईसीजी की तस्वीर है। जब इंसान जिंदा होता है ना, तो उसका दिल तेजी से धड़कता है, फिर उसके बाद वो उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है।
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
سورة جمعہ کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بے شک وہ تو تمہیں ملنے ہی والی ہے۔ امیجن کریں، کیا میں موت سے بھاگ رہی ہوں؟ انسان کب بھاگتا ہے اور کیسے بھاگتا ہے؟ صحت مند رہوں، اچھی خوراک کھاؤں، دوا کھاؤں، گرمی سردی سے بچنا، ہر وقت ہمیں یہی فکر رہتی ہے نا، اپنی اور اپنے بچوں کی، کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ ملاقات کرنی ہی ہے تم نے اپنی موت سے، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، وہ ذات جو چھپی کو بھی جانے اور کھلی کو بھی جانے۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ سوچئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو میں نے زندگی میں کیا۔ موت وہ ہے، کیا ہے موت؟ ایک پہلوان جو بڑے بڑوں کو بچھاڑ دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت سے ڈرنا ہے؟ نہیں، موت کو یاد کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ سورت نحل آیت 61 میں آتا ہے، اور اگر اللہ ان کو ان کی بے انصافی پر پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمار کئی کئی دن مہینے ہاسپٹلز میں گزار دیتا ہے، جانے انجانے طور پر لوگوں کو بھی انتظار لگ جاتا ہے کہ اب اس کا وقت کب ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت تب آتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ تو کیا ایک انسان موت کی آرزو کرے یا نہ کرے؟ منع کیا گیا، تکلیف خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، مسلمان کو موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا۔ یعنی آپ کی زندگی میں تکلیف دہ حالات ہیں، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے موت دے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ क्योंकि जिंदगी भर में मोहलत तो है ना, और अगर बदअमल है तो शायद इसे तौबा की तौफीक मिल जाए। इसी तरह उम्र का इजाफा इसके लिए खैर का बायस हो, क्योंकि मौत अमल और तौबा दोनों का दरवाजा बंद कर देती है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ या मर्ज की वजह से जो इसे पहुंचे तंग आकर मौत की आरजू हरगिज न करे। अगर इसने जरूरी ही करनी है तो ये अल्फाज कहे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ये दुआ दोहरा लीजिए। ये है दुआ उस शख्स की कि जिसकी जिंदगी उस पर तंग हो गई, बीमारी शदीद है, सब्र नहीं हो रहा, जान का खतरा, इज्जत का खतरा है, तो फिर ये दुआ हम कर सकते हैं। लफ्ज मेरे साथ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ्फनी इजा कानतिल वफातु खैरल ली। इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, अहयिनी, मुझे जिंदा रखना, मां जब तक कानत हो, अल हयातु, जिंदगी, खैरल ली, बेहतर मेरे लिए, वा और तवफ्फनी, मुझको फौत करना, इजा जब कानतिल वफातु हो वफात यानी मौत, खैरल ली मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। आप देखिए परसेप्शन चेंज कर दिया कि अल्लाह जिंदगी तब तक रखना जब तक मेरी जिंदगी मेरे हक में बेहतर है, और जब मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे मौत दे देना। फिर मौत के बाद अगली चीज क्या है कि हमें मौत कब आएगी, मौत का मुकाम क्या होगा? सूरत लुकमान की आयत 34 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कोई नफ्स नहीं जानता कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी, बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाला और बाखबर है। जहां मौत आ जाएगी वहां से बचना मुहाल है। सूरत निसा आयत 78 में आता है, अइनमा तकून युद्रिककुमुल मौत, जहां कहीं भी तुम होगे मौत तुमको आ पकड़ेगी। सोचे जैसे मुर्गी के पंजों में कोई आ जाता है ना, या ऊपर से उड़ती हुई चील गोश्त के टुकड़े को पकड़ती है, मौत पकड़ेगी। वलो कुन तुम फी बुरुजे मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत कलों में हो। और वो वाकया तो आपने बहुत दफा सुना होगा कि एक शख्स हजरत सुलेमान की महफिल में बैठा था, और कोई दूसरा शख्स जब उसको घूर रहा था, इतना खौफतारी हुआ उस पे, कहने लगा मुझे दूर की किसी जगह छोड़ दे। हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने कुछ अनयूजुअल मोजज़ात दिए थे, हवाओं के जरिए सफर तय करते हैं, उस शख्स को दूर कहीं पहुंचा दिया। उसके बाद दोबारा जब वो शख्स आया जो असल में मलकुल मौत था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस दिन तुमने उस शख्स को क्यों इतना डरा दिया? कहा इसलिए कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि चंद लम्हों के बाद इसकी जान निकालूं, और वो जगह तो यहां से बहुत दूर है। मैं तो ये सोचकर उसको घूर रहा था कि ये वहां पहुंचेगा कैसे, लेकिन देखिए अल्लाह ने कैसे सबब बनाया कि वो खौफ ज़दा होकर वहां खुद ही पहुंच गया, और जू ही कहता है वहां पहुंचा तो मलकुल मौत ने उसकी जान ले ली। तो मौत के लिए दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे बरकत वाली जगह पर मौत देना। सही बुखारी की रिवायत से भी ये बात पता चलती है कि ऐसी आरजू रखना कि किसी बाबरकत सरजमीन या मुकद्दस मुकाम, जैसे बैतुल मकदस है, हरमैन शरीफैन यानी मक्का में हरम है और मदीना में मस्जिद नबवी है, इसी तरह रियाजुल जन्ना में मौत आए, इसी तरह जन्नतुल बकी जो मदीना में है और जन्नत मुअल्ला जो मक्का में है, इनमें से भी कहीं अगर इंसान दफन हो तो ये भी बाबरकत बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे तेरे नबी के शहर में शहादत की मौत देना। क्या मतलब? मौत भी मदीना में और शहीद भी हूं। अब आप देखिए मदीना में तो कोई जंग भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला जब पहुंचाना चाहता है तो ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं कि अल्लाह के रास्ते की गवाहियां देते हुए बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी होते हैं, और जब उनको मदीना इलाज के लिए पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल में पहुंचते ही मौत आ जाती है। तो उनकी जिंदगी भर की ये दुआ कबूल हो गई कि अल्लाह मुझे मदीना में मौत देना और शहादत की देना। फिर इसी तरह एक और सवाल आता है कि जब मौत आती है तो उस वक्त इंसान क्या गुमान रखे? तो बीमारी जितनी शिद्दत भी इख्तियार कर ले اور انسان کو محسوس بھی ہونے لگے کہ وہ موت کے قریب ہے، تو اس کو اس وقت بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تمہارے کسی ایک کو اس حال میں موت آئے، یعنی تمہارے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی فوت ہو رہا ہے یا بیمار ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے ادب کیا ہے کہ شور اور ہنگامے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ بھی وہاں موجود ہوں جہاں کوئی بیمار ہے یا قریب المرگ ہے، تو ان کو کم سے کم بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے مرنے والے کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے، اس کی کمزور سی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 روز پہلے کسی اختلافی مسئلے پر جب لوگوں کا شور ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اس دن 3 اور باتوں کی بھی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دینا، اور دوسرا یہ کہ وفود کی اسی طرح خاطر مدارت کرنا جس طرح آپ کرتے تھے، اور تیسری آپ نے نصیحت کی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ رہی کو مختوم میں یہ بات ہے۔ اور میں کسی ایسے جانے والے کو جانتی ہوں کہ جب بیماری کی شدت بڑھی اور اتنی تکلیف ہو گئی کہ بات بھی نہیں کرتے تھے، اور جب لوگ پاس آ کے حال پوچھتے ہیں نا، ہمارے ہاں بیمار کا حال اسی سے ہی پوچھنا پسند کرتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ صرف اتنا کہنا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے پوری طاقت لگانی پڑتی ہے، تو منع کرتے تھے ہمیں۔ با اخلاق بہت تھے تو دوسروں کو بہت اچھی طرح ملتے تھے، لیکن آخری دنوں میں یہ حال ہو گیا تھا کہ جب کوئی ان کی عیادت کے لیے آتا تھا تو آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کراتے تھے کہ سو گیا ہوں۔ کہتے تھے جو میرے پاس بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو سننے کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے میں گہرے کنویں میں سے باہر آ رہا ہوں۔ تو بہت کم بولنا چاہیے، اس سے اگلے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور خود کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ موت کے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو جائے، تو اس کو کیا خوبی ہے؟ احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو، اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا، خواہ اس سے پہلے کتنی ہی سزا ملے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ زبان سے کلمہ نکالے گا۔ اب کریں کیا؟ جب کوئی نزاع کے وقت ہو نا، تو آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو کہنے کی بجائے کہ تم کلمہ پڑھو، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا، تو سنتے سنتے اس کی بھی زبان پہ آ جائے گا۔ ایک امام تھے بہت نیک اپنے وقت کے، جب لوگ ان کو کہیں کلمہ پڑھو تو آگے سے کہے لا لا، میں نہیں نہیں، بہت پریشان ہوئے ان کے بچے، پھر وہ بے ہوش ہو جائے، پھر کہ جب بے ہوشی سے ذرا سی حالت ٹھیک ہوئی، فاقہ ہوا، کہا کیا ہوا، ہم تو آپ کو کلمہ کہہ رہے تھے پڑھنے کو، تو آپ کیوں کہہ رہے تھے نہیں؟ کہا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، میرے پاس شیطان آیا اور مجھے کہنے لگا یہودی بن جاؤ، تو میں نے کہا نہیں بنوں گا، لا، کہنے لگا اچھا نصرانی بن جاؤ، تو میں تو اس کو نہ کہہ رہا تھا، تمہیں تھوڑی کہہ رہا تھا۔ تو یاد رکھیے، فوراً فتوے نہیں دینے چاہیے کہ جی اس نے تو کلمے کا انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ ایک معروف روایت ہے کہ اس کو کہو کلمہ پڑھے، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، تکلیف کی شدت سے ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو پسندیدہ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا ہوا تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پھر پھرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے تو سختیاں ہیں۔ یہ لفظ تو سکرات ہے نا، اس پہ غور کیجئے گا، سکرت ان سے سکارا قرآن میں آتا ہے، وان تم سکارا سورۃ نساء میں، نشے کو کہتے ہیں، یعنی موت کی ڈبکیوں میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہوا ہے، ڈوب ڈوب کے جاتا ہے۔ سورہ حج میں بھی آتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، وہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، تو موت کے وقت بندہ ڈوبتا ہے، جسم میں روح چھپتی ہے۔ احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح جسم میں ادھر سے ادھر چھپتی ہے، تو اس کو نکالتے ہیں فرشتے، اور کافر ہے تو اس کو ہنٹروں سے مارا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ अच्छा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बात है, इसके बारे में किसी ने एक बहुत बड़े इमाम से भी पूछा, इमाम इब्ने कय्यम थे गालिबन, कहा कि ये मौत के वक्त जो कलमा होता है इसकी क्या हैसियत है। कहने लगे, अब ये बात आप भी और मैं भी गौर से सुने और अपने लिए अमल का नुक्ता खुद ही नोट कर लें। कहने लगे कि इस बंदे मोमिन के दिल में जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, यानी ताल्लुक बिल्ला मजबूत है, कलमे के तकाजे पूरे करता है, जिंदगी भी उसके मुताबिक है। मौत के वक्त मलकुल मौत को देखकर खौफ की वजह से वो कलमा जुबान पे आ जाता है। जैसे चोर घर में आता है ना, तो चोर को देखते ही घर के लोगों की जुबान से खुद ही निकलता है, चाबियां उधर है, सोना इधर है, ये ले लो बस हमें छोड़ दो। तो जब दिल में कलमा होता है ना, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर मौत पे जुबान पे आता है। ये दुआ करें कि हमारी जिंदगी में कलमा आ जाए। फिर इसी तरह याद रखें कि मौत के वक्त कैफियत क्या होती है, खौफ और उम्मीद एक साथ होना चाहिए। मौत की बेचैनियों में भी मुसलमान को खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत में रहना चाहिए। किस बात का खौफ? अपने गुनाहों की सजा का खौफ, अल्लाह की पकड़ का खौफ। उम्मीद किसकी? रब की रहमत की। अल्लाह के नबी एक नौजवान के पास तशरीफ लाए, मौत और हयात की कश्मकश में था। आपने पूछा, कैसे हो? कहने लगा, बखुदा ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ और अपने गुनाहों से भी डरता हूँ। आपने फरमाया, ऐसे मौके पर किसी बंदे के दिल में जब ये दो चीजें पैदा हो जाएं, तो अल्लाह ताला इसे इसकी उम्मीद के मुताबिक दे देता है और जिस बात का इसे अंदेशा हो इससे महफूज कर लेता है। तिर्मिजी की ये रिवायत है। तो मेरे और आपके लिए इसमें कितनी बड़ी खुशखबरी है, दोनों कुछ साथ रखिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिंदगी में ही कुछ दुआएं याद कर लेनी चाहिए। कौन सी? जो मौत की सख्तियों में मदद करें। हमें नहीं पता मौत कब आएगी, किस हाल में आएगी। अब उस वक्त सीखने का कोई वक्त होगा? किताब खोलने का वक्त होगा? किसी से कहेंगे फलां पेज खोलो? नहीं, उस वक्त उसी की जुबान पे दुआ आएगी जिसको याद होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं भी सिखाई हैं। दुआ की इंसान को जिंदगी भर जरूरत रहती है। मरने के करीब भी मुसलमान अपनी जान और अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करते हुए दुआओं के जरिए मदद और फजल तलब करता है। ये मसनून दुआएं हैं, अगर हम रोजमर्रा के अजकार का इनको हिस्सा बना लें तो उम्मीद की जाती है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी जुबान पर ये दुआएं जारी होंगी। चंद दुआएं आपके साथ दोहराती हूँ और आप फिक्र ना कीजिए, जो फोल्डर आप लेंगे एंड पे, इंशाल्लाह उसमें ये दुआएं मौजूद होंगी। पढ़ते हैं मिलके। अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौती वसकरातिल मौत। ये तिर्मिजी की रिवायत है। आइए इसका लफ्जी तर्जमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइनी मेरी मदद फरमा, अला गमरात ऊपर डुबकियों के, या डूबना, गमरा गमरा तुन से बेहोशियां, अल मौत मौत की, यानी ए अल्लाह मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा, व सकरात इल मौत और मौत की बेहोशियों में भी। इसी तरह सूरत मोमिनून की आयत 118 में एक दुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। रब इग़फ़िर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम कर, तू ही बख्शने में बेहतरीन है। तो ये छोटी छोटी दुआएं इंशाल्लाह हम इसको याद करेंगे और दुआ करते हैं कि जब हमारी मौत का वक्त आए तो ये सारी दुआएं हमारी जुबान पे हों। इसी तरह सही मुस्लिम की एक दुआ है, इसको भी दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, ए अल्लाह मैं आपसे आपके फजल का सवाल करता हूँ। जिस पर अल्लाह का फजल हो गया फिर उसको तो किस चीज की रोक है। तो मौत का सफर यहाँ पे बज़ाहर पूरा होता है। अब हम अगले सफर में देखेंगे अपने आखिरी सफर की तैयारी। देखिए, डरने की बात नहीं है, आना तो है, तैयारी कर लें बस। इसके बारे में कुरान पाक में आता है और अल्लाह ताला ने हर चीज खोल के बयान कर दी। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और इनमें से हर एक उसके पास अकेला ही आएगा। सूरत मरियम की आयत 95 है। अपने ऊपर लें, दुनिया में तन्हाए थे, और आगे भी तन्हा जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हमारा बोझ बांटते हैं, सफर के दौरान तो कई खिदमतकार मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सफर मेरा और आपका होगा, जिसको आखिरी सफर कहते हैं, उस दिन कोई मेरे साथ नहीं होगा। अपना हैंड कैरी भी मुझे खुद उठाना पड़ेगा, अपना लगेज भी खुद ही उठाना पड़ेगा, अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले कि जब किसी के मरने की खबर मिले तो कहना है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, खुद से पूछिए, जरा इस जुमले पे गौर कीजिए और इसको सिंगुलर में लेके आते हैं। जब हम इन ना कह देते हैं ना, तो हम कहते हैं सारे नहीं। जरा नजरें जमाएं और अब मैं जो बोलूंगी उसको सुनिए, इन्नी लिल्लाह। इतना तो अरबी का हमें थोड़ा सा शऊर है ना, इन्ना हम सब, इन्नी मैं। आप खुद को कहें इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूं। कैसा लगता है सुनकर? अच्छा लगता है ना? जब जिंदगी में हम अल्लाह के बनेंगे ना, तो मौत के वक्त भी ऐसा ही होगा। जब हम जिंदगी भर अल्लाह के बनते हैं तो मौत का वक्त खूबसूरत होता है। वइन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें लौटना है। देखिए, जिधर जाना होता है ना, नजरें उधर लगी होती हैं। घर सबको प्यारा लगता है, रात को वापसी घर में ही होती है। जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा और जिसको यकीन है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बी किरादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये कौन सा शख्स है जिसका दिल अल्लाह में लगा हुआ था? तो अमल के लिए लिखिए, इससे पहले कि लोग मेरे ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़े, मुझे खुद अपने ऊपर इन्नी लिल्लाह पढ़ना। और ये जो इन्नी लिल्लाह है ना, यही है कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरा जीना और मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और यही है जिसको इब्राहिम ने कहा था, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, सजाहदीन, वो राह दिखाएगा। हकीकत है कि ईमान वाला सारी जिंदगी इसी जुमले का विर्द करता है, अल्लाह मैं तेरी तू मेरा बन जा, अल्लाह मैं तेरी तू मेरा बन जा। अगर आज मैं और आप जिंदा है, खुद को चुटकी काटे, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं अल्लाह की हूं। और जब कोई मुझे कहे आप तो बड़ी अल्लाह वाली लगती हैं, तो खुशी होती है कि घबरा जाते हैं कि पता नहीं शायद स्कार्फ ज्यादा टाइट तो नहीं बांध लिया। हम तो अल्लाह वाला बनते हुए भी डरते हैं वल्लाही। जब हमें लोग कहते हैं ना आप बड़ी मॉड लग रही हैं, बड़ी स्कॉट, बड़ी यंग, हम कहते हैं अब ठीक है। नहीं, आज जिंदगी में अल्लाह के बन जाए, मौत का मामला अल्लाह पर डाल दें। अल्लाह के नबी ने कहा फिक्र ज्यादा ना किया करो, इस्तगफार ज्यादा किया करो। बाज लोगों को फोबिया होता है, हाय क्या बनेगा, किधर जाएंगे, पता नहीं पता नहीं। अच्छा, इसी में बेअमल हो जाते हैं। नहीं, जो अल्लाह कर सकती थी किया है, अब आगे तू जान, मैंने तेरे लिए कर दिया, अब तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ला तो आखिजना इन नसीना, कुछ भूल गई है तो माफ कर दे, पकड़ना ना। ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता वल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, अल्लाह दीन में वो बोझ ना मेरे पर डालना जो पहलों पे। इस तरह आप अल्लाह वाले बनेंगे कि दिन रात आप अल्लाह से बातें करेंगे। अब जब आपका इंतकाल हुआ या आपके सामने किसी का हुआ, तो करना क्या होता है ये नोट कीजिएगा। नंबर एक, मरने वाले की आंखें फौरन बंद कर दें। हदीस में आता है कि मैयत पीछा करती है रूह का, इसीलिए आप देखते हैं कि आंखें ऊपर लग जाती है ना, तो वो खौफनाक लगता है। अल्लाह ने बंदे की इज्जत मरने के बाद भी रखी है। आज मैं आपके सामने अपनी आंखें ऊपर करके आपको दिखाऊं तो आपको खौफ आएगा ना, तो मैयत की आंखें ऊपर चढ़ी भी देख के भी खौफ आता है। तो क्या फौरन आंखें बंद कर दो, हाथ पांव सीधे कर दो। क्यों? थोड़ी देर के बाद करेंगे तो मुश्किल होगा। शुरू में जिस्म नरम होता है, फिर सख्त होने का डर है। फिर अगला काम क्या करेंगे, एक चौड़ी सी पट्टी मैयत की ठोड़ी के नीचे से निकालकर सर के ऊपर बांध दे। कभी बच्चे को खून निकला हो उसको इमेजिनेशन में लाइए। तैयारी तो हर वक्त होनी चाहिए। घर में कोई कपड़ा है रखा हुआ, उसको इस तरह से ठोड़ी के नीचे से सर तक बांधे कि मुंह बंद हो जाए। क्यों ऐसा करना है? ताकि मुंह खुला ना रहे। अब ये जुमला मैं बोल रही हूं तो मैं खुद अपने ही कल्चर का एक मारूफ जुमला बोलती हूँ, इसका मुंह बंद करो। हकीकत है कि जिंदगी भर मुंह बंद नहीं होता, ना बातों से बंद होता है और ना दुनिया मांगने से बंद होता है। ये उस दिन बंद होगा जिस दिन पट्टी के साथ इसको बांध दिया जाएगा। दोनों पांव करीब करके एक और पट्टी की मदद से बांध दिए जाएं। अब दोनों पांव को सीधा करें, दोनों के अंगूठों को साथ जोड़ें और एक और पट्टी के साथ उनको बांध दें। बाद में गुसल के वक्त ये पट्टियां खोल दी जाएंगी। ऐसा भी क्यों करेंगे? ताकि जिस्म अगर अकड़े तो इसी तरह सीधा हो, वरना बाद में आपको पता है कि उठाना बिठाना मुश्किल हो जाता है। अगर बाजू टेढ़ी हो और कपड़ा बाद में पहनाना या उस कफन के अंदर लपेटना उनको मुश्किल होता है, तो हर मुमकिन हद तक डेड बॉडी को सीधा करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अमल के मैयत को चादर से ढांप दे। हादसे के असरात या मौत की सख्ती की वजह से मैयत में कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है, रंग बदल जाता है, चेहरे पे कोई निशान आ जाता है, और दूसरे लोग बार बार देखना चाहें तो इन्हें ऐसा ना करने दें, मैयत को ढांपा रहने दें। यहां मैं आप सब साथियों को रोक के एक नसीहत करूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में मैं मर जाऊं तो मेरा चेहरा कोई ना देखे। इसको बस उसी इज्जत के साथ दफना दें जैसे हम जिंदगी में अपने प्यारों को दफनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तीन वक्त में चेहरे देखने का बड़ा रिवाज है। पैदा होते हुए बच्चे का, शादी के वक्त दुल्हन का, और मरते हुए शख्स का। और तीनों पे कमेंट्स देने तो हमारा फर्ज लगता है। पैदा होते बच्चे को भी जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं, उससे मिलता उस जैसा वैसा, और अगर बच्चा दबा हुआ है तो माँ बेचारी को मुजरिम करार देंगे, ये क्या पैदा किया तूने। और अगर दुल्हन के ऊपर कुछ नूर की बरसात कर दी मेकअप की सूरत में, तो कितनी बच्चियां जिनका चेहरा वाजबी है वो कॉम्प्लेक्स में चली गई। ये मुंह भर भर के तारीफें करना याद रखे कि उन छुरियों से काटना है, इस्लाम इसको कतन पसंद नहीं करता। और फिर घर आके जो कमेंट्स देते हैं कि बड़ी लग रही थी और ये थी और वो थी, ये अच्छा नहीं। और इसी तरह बास लोगों ने ये जुल्म भी किया कि मैयत को भी घर आकर डिस्कस किया, और जुल्म इस पे एक और अब हो गया। आज की साइंस की तरक्की ने एक नया फितना खड़ा कर दिया, दूर के रिश्तेदारों को दिखाने के लिए किसी मीडियम के जरिए से फिर उस वक्त वीडियोस बनाई जाती हैं, कभी स्काइप पे और कभी लाइव। और अब आहिस्ता आहिस्ता फिर यह है कि तस्वीर अच्छी आए और चेहरा चमका हुआ दिखे तो फिर जरा मेकअप भी कर दो। आपको पता है कि गोरे मेकअप करते हैं दुल्हनों की तरह, सारे जिस्म का खून निकाल के उसको पूरे जिस्म में कुछ भर के उसको फ्रेश करते हैं, स्किन सारी टाइट हो जाती है। इनकी बुढ़िया जो फौत होती है ना, जब इनका फ्यूनरल प्रोसेस पूरा होता है वो बिल्कुल यंग दिखती हैं। फिर कई दिन तक उसको डिस्प्ले पे रखते हैं, सुरख रंग के कपड़े और मेकअप होता है ताकि देखें लोग कि ये बहुत यंग एज के दिख रहे थे। तो इस्लाम नहीं चाहता इस चीज को, मैयत को ढांप दे बस। और यहाँ फिर एक ज्यादती है कि औरतें मर्दों को, मर्द औरतों को भी देखने से गुरेज नहीं करते। क्या आप अपने ऊपर लेके सोचिए, आप चाहती हैं कि कोई आपको देखे? आपका रंग बदल गया, पीला हो गया, काला हो गया, खून जम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं अगर मरने वाले का चेहरा काला हो जाए। ये कोई वो नहीं है कि चेहरों की स्याही नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन लोगों का मौजे सुखन ना बने तो कोई मरने वाले को ना देखे। कोई अपना प्यारा है जिससे कोई मोहब्बत है, हल्की सी झलक देख ली, दैट्स इट। फिर इसी तरह एक और काम किया जा सकता है कि मैयत को बोसा भी दिया जा सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है कि जब नबी सल्लम का इंतकाल हुआ था तो आपने आपके माथे पे बोसा लिया था। फिर इसी तरह अगला करने का काम क्या होता है कि करीबी पड़ोसियों को फौरन इत्तला करें। मुमकिन है कि वो तजहीज़ो तकफीन और आपके और मैयत के करीबी रिश्तेदारों को इत्तला करने में आपकी मदद करें, यानी ये बात आम करने की है। मुसलमान के जो मुसलमान पर हक है ना, उसमें ये हक है कि वो उसकी नमाज जनाजा पढ़े। और इसी तरह बताने की एक और हिकमत भी है, वो भी नोट कर लीजिए। और वो क्या है कि जब आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से, यानी वो फौत हुए तो हो सकता है कोई लेने देने के मामले हो जिंदगी के, तो वो फौरन बराबरी कर लें, माफ कर दें या आपको बता दें, वरना अगर उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने कर्ज देना था तो मैयत के लिए बोझ होता है। हदीस में यहाँ तक आता है कि उसके लिए मैयत के लिए बोझ होता है। फिर इसी तरह मैयत के छोड़े हुए माल में से कफन दफन के खराजात पूरे करने चाहिए। हाँ, अगर घर वाले, बच्चे, बीवी, शौहर, कोई रिश्तेदार अपनी खुशी से कहते हैं कि हम खर्च करते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखिए कि बंदे के पास इतना तो हो कि अपना कफन दफन तो करवा सके बाद में। कई नेक लोग ऐसे गुजरे हैं कि जो अपना कफन लेके रखते थे। मैं आप अपने लिए सोचे, क्या हमारी वार्डरोब में हमारा कफन है? इतने ब्रांडेड कपड़ों में कफन किस ब्रांड का? इतने पैसे कपड़ों पे लगते हैं। अब एक काम करें, जब मौका मिले अपना कफन खरीद के रख लें और उसको अपनी वार्डरोब में सजा लें। देखिएगा कैसे हकीकत पसंद होंगे। कभी तो उस पर नजर पड़ेगी हफ्ते में एक बार ही सही, तो फिर इंसान को तैयारी करनी पड़ती है। फिर इसके बाद मैयत के जिम्मे अगर कोई कर्ज है, कोई उधार उसने लिया, कोई वाजिबात थे उसके जिम्मे, जैसे बीवी का हक, मेहर वगैरह, आपको उसकी खबर है तो उसकी अदायगी उसके माल में से करें। और अगर मैयत ने इतना माल नहीं छोड़ा कि ये सब अखराजात पूरे हो सकें, तो रिश्तेदार और दूसरे मुसलमान इसकी तरफ से करेंगे। और इसी तरह माफ भी कर देना चाहिए। एक आवाज लगा दीजिए कि अगर मरने वाले ने किसी का कुछ देना लेना है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हमसे राब्ता करें। या फिर एक दुखती बात कह के ही आगे जाऊंगी, खुद से पूछें, अगर मेरी मौत का वक्त आ जाए तो क्या इस वक्त मेरे सर पे कोई कर्ज तो नहीं है? आज उम्मत मुस्लिमा ने ख्वाहिशों के भंवर में फंस के खुद को कर्जों के जाल में बांध लिया। मुसलमान जरूरत पे तो कर्ज ले सकता है, ख्वाहिश पे नहीं ले सकता। हर मुमकिन कोशिश करके जल्द से जल्द अपने कर्जों से खुद को फारिग करें। अल्लाह के नबी नमाज नजर नहीं पढ़ाया करते तो शख्स की जिसके सर पे कर्ज होता है। यहां तक रिवायत आती है कि मैयत लटकती रहती है आसमानों में जब तक कि उसका कर्ज अदा ना किया जाए। पसंदीदा अमल नहीं है, खुद नहीं कर सकता कोई अदा तो कोई दूसरा भी कर सकता है। फिर इसके बाद आप देखिए विल, जिसको वसीयत कहते हैं। हल्का सा आज बात करूंगी, लेकिन कल के सेशन में हम आपको इंशाल्लाह फोल्डर्स में एक पेपर दे रहे हैं, उस पर डिटेल सेशन होगा। और मेरा ख्याल है कि हम सबको अपनी विल अब लिखनी ही है। वसीयत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? पहली बात यह है कि जिंदगी भर इस वक्त जबकि आप जिंदा और अल्लाह आपको सलामत रखे, आप अपने पूरे माल की मालिका हैं। मर्द मर्द के माल का भी है और औरत औरत के, यानी अगर आप मैरिड हैं और आपकी जाती चीजें हैं, आपके माँ बाप ने दी या आपने खुद कमाई या किसी भी तरह आपको मिली, आपकी है वो, आप अपनी मर्जी से पूरी भी खर्च कर सकती हैं। सारी कर दें अल्लाह के रास्ते में, सारी अपने आप पे लगा लें, सारी किसी को दे दें, आपको पूरी इजाजत है। लेकिन जू ही आप दुनिया से जाएंगे, अब आपके माल में से सिर्फ और सिर्फ 1/3 आपका रहेगा। तो लिख लीजिए, अपने माल के 1/3 को क्या करना है, इस बात को वसीयत कहते हैं। फिर बोल देती हूं, माल के 1/3 हिस्से को मरने के बाद किसी एक को या ज्यादा को बांट कर देने का हुक्म दे जाना या तहरीर कर जाना, ये बात वसीयत कहलाती है। मैयत के कुल माल के 3 हिस्से किए जाएंगे तो 2 हिस्से माले विरासत शुमार होंगे, जबकि तीसरा हिस्सा बतौर वसीयत होगा। जरूरी नहीं कि आप वसीयत करें, अगर आप वसीयत नहीं करेंगे तो आपका सारा विरसा आपके वारिसों में शरई तौर पे बट जाएगा। जब वसीयत करेंगे तो वारिस के हक में नहीं करेंगे। मसलन आपके 3 बच्चे हैं और उनको बराबर का हिस्सा मिलना ही है, लेकिन आप कहें कि मेरे 1/3 को मेरे एक तीसरे बच्चे को वो भी दे दें, ये नहीं कर सकते। हदीस में आता है, ला वसीयत ली वारिस, जिसको अल्लाह ने दे दिया उसको आप नहीं दे सकते, और ना आप किसी को महरूम कर सकते हैं, आंख नहीं कर सकते कि मेरे फलां बच्चे को मेरी जायदाद नहीं मिलेगी। मैयत ने अगर वसीयत लिख रखी थी तो जल्द अज जल्द पढ़ ली जाएगी। हो सकता है कि कोई बर वक्त करने वाला काम हो जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, मसलन उसे अपने बच्चों में से किसी खास बच्चे से गुसल कराने की तमन्ना हो, या नमाज जनाजा की इमामत के लिए उसने किसी दीनदार भाई या दोस्त का नाम दिया हो, और इसी तरह हो सकता है उसने खानदान के लोगों को मना किया कि मुझे गैर शरई रस्मों से पाक रखिएगा। तो लिहाजा वसीयत अगर आपने भी लिखी है ना, इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिटेल से बात करेंगे, तो लिख के उसको फिर खुली जगह पे रखें ताकि कभी भी किसी अचानक मामले पे वो पढ़ी जा सके। फिर इसी तरह वसीयत में अगर किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت سے ٹکرا کر وصیت کرنا یہ تو درست کام نہیں ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کی. اب چلتے ہیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے گا. مرنے کے بعد خبر بھی ہو گئی، لوگوں کو بتا بھی دیا، سب کچھ تیار ہے، تو جنازے کی تیاری کے لیے جو کام کیے جائیں گے آپ ان کو پانچ حصوں میں بانٹ لیجئے. نمبر ایک، غسل میت، میت کو غسل دینا. نمبر دو، کفن میت، میت کو کفن دینا. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد بھی بے لباس نہیں رکھا انسان کو. پھر تیسری چیز ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا. چوتھی چیز ہے قبر کی تیاری، اور پانچویں ہے تدفین، دفن کرنا. ان پانچوں کو ہم باری باری اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا اصل کیا ہے، ہمارا اصل گھر کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ جاتا ہے. آئیے ذرا اس میں سے اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے غسل میت کو دیکھتے ہیں. غسل یغسلو سے غسل کرنا. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کو بھی غسل لینا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی غسل لینا آتا ہے. اسی طرح اسلامی تہذیب میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسے غسل دلا کر، اجلا لباس یعنی کفن پہنا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر لے جا کر اٹھایا جاتا ہے، اور انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے، نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور پھر بڑی عزت اور وقار کے ساتھ اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت بھی دی، پھر قبر بھی دی. تو میں اکثر سوچتی تھی یہ کیا خوبی ہے، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اگر قبر نہ ہوتی تو مردے جانوروں کے منہ میں ہوتے، کتے ہڈیوں کو لے لے کے پھرتے تو کیا خاک ہوتی، کیا عزت ہوتی. کئی لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ وہ جلاتے ہیں، کئی ان کو کھڑا کر کے ان کے جسم میں سلاخیں پھیر کر جسم کی گندگیاں نکالتے ہیں. اسلام نے کہا خبردار، ہاتھ نہ لگانا، مشکل سخت ہاتھ نہ لگانا، زندہ کو جیسے درد ہوتی ہے مردہ کو بھی ہوتی ہے. اگر کسی نے زندہ کی ہڈی توڑی تو درد ہوئی، تو مردہ کی ہڈی توڑنے کا بھی درد ہے. تو لہٰذا غسل کیا جائے گا. کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ذرا سے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہے بیری کے پتے. اب آج نہیں ہے آپ کے پاس، کہیں ملتے نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا آلٹرنیٹ صابن یا شیمپو. ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ سب چیزیں سائیڈ ایشوز ہیں. ہم اس میں اتنی بحثیں کریں گے بیری کے ہیں یا کھجور کے ہیں، اس کے ہیں، پانی کون سا، صابن کون سا، خوشبو یا نہیں. اللہ کرے اگر زندگی میں ہم نے اتنی تحقیق شریعت پہ عمل کرنے میں کی ہوتی تو ہم بچ جاتے. لیکن سنت طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ابالے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر جراثیم بھی مر جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی پاس نہیں آتے. دوسری چیز ہے کافور، خاص خوشبو ہوتی ہے، عطر لگا لیں اگر وہ نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے تو سندل کا پاؤڈر. پھر تیسری چیز جو چاہیے ہوگی وہ روئی ہے، اور چوتھی چیز ہے کپڑے کے دستانے. کچھ ٹکڑے رکھ لیجئے پاس کپڑے کے، صفائی کے کام آئیں گے. جسم کو خوش کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی صاف کپڑا، اور چادریں جو میت پر پردہ کرنے کے لیے یا اسے اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. پردہ کرنا کیا؟ غسل سر عام کپڑے اتار کر نہیں کیا جائے گا، اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور کپڑے کے اندر ہاتھ بڑھا بڑھا کر گیلا کیا جاتا ہے. اس سے بھی کوئی باحیا دین ہوگا. اور بعض چادریں جو مضبوط سی ہوتی ہیں اس کو نیچے بچھا کر چاروں کونوں سے بوجھ کو برابر کا اٹھانے کے لیے چادر کو ایز اے کیریئر بھی استعمال کیا جائے گا. کیا کیسے جائے گا تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کریں. کبھی کسی بیمار کو آپ نے پیچھے ہاتھ سے سہارا دے کر اٹھایا ہوگا، بس وہی کیفیت ہے. تصویر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کمر میں پیچھے ہاتھ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے بٹھائیں کہ اوپر کا حصہ تھوڑا اٹھ جائے. پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبا دیا جائے، یعنی ہلکے ہلکے ہاتھ سے سہلائیں، پیٹ کو ایسا سا دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے، क्योंकि मौत तो अचानक आती है, हो सकता है उससे पहले कुछ खाया पिया हो तो जिस्म में गंदगी ना रुके, और बाद में फिर वो कफन पे लगने का डर है, तो फुजलात और गंदी चीजें एक्सक्रीशन जो जिस्म में होती हैं वो इस तरह दबाने से निकल जाती हैं। और याद रखिए सब कुछ ग्लव्स पहन के होगा। इस मौके पर कसरत से पानी बहाया जाए ताकि जो कुछ निकला हो पानी से बहा कर ले जाए। गुस्ल देने वाला अब अपने हाथ पर एक कपड़ा बांध कर या कपड़े की थैली या रबड़ के दस्ताने चढ़ाकर मैयत की तहारत करे, यानी इस्तंजा करे। जाहिर जिस्म से गंदगी निकली तो वॉश तो करना है, और जो भी नजासत वगैरह रह गई हो इसे अच्छे के जिस्म पर से ये कपड़ा दिया जाए, यानी इसको फेंक दिया जाएगा, दोबारा यूज नहीं करें। अब दूसरी साफ थैली या दस्ताना चढ़ा लिया जाए और नहलाने वाला मैयत की तरफ से गुस्ल की नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ठीक है? जैसे हम अपना गुस्ल करते हैं ना, मरने वाले का भी गुस्ल बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है? हम भी जब गुस्ल के लिए जाते हैं तो बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, इस तरह वो भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैयत खातून हो तो गुस्ल से पहले सर के बंधे हुए बाल खोल दिए जाए, क्यों भला? ताकि बालों की जड़ों में भी पानी पहुंच जाए। और याद रखिए कि मर्द है तो मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत है तो औरत को औरत गुस्ल देगी, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि शौहर बीवी को और बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है। हजरत आयशा और नबी सल्लम आपस में यही कहा करते थे कि अगर पहले तुम मर गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, और इसी तरह दूसरी तरह। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया। ये जो हमारे यहाँ एक ख्याल बन गया ना कि निकाह टूट जाता है, और बाज तो इतना जुल्म करते हैं, इतनी जिंदगी साथ गुजारी हुई औरत को शक्ल नहीं देखने देते, कहते हैं बगैर महरम हो गए, और बाकी औरतें जो मर्जी देखें, लेकिन इस पे जुल्म करते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। कोई निकाह नहीं टूटता, फिर तो इद्दत करने की भी जरूरत नहीं रही अगर निकाह टूट गया तो। बहरहाल कैसे होंगे गुस्ल के स्टेप्स, इसको भी 1 2 3 करके लिखेंगे तो ज्यादा ईजी होगा। दाई तरफ से शुरू करते हुए नमाज के वजू की तरह का वजू कराया जाए। एक शख्स ये कर रहे हैं ना तो कोई दूसरा साथ उसकी हेल्प कर सकता है, मतलब शावर है हाथ में या कोई डब्बे के साथ पानी डाल रहे हैं तो वो पानी डलवाएगा। बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे आप खुद करते हैं, ना कुली कराई जाएगी और ना नाक में पानी डाला जाएगा। इसकी बजाय कपड़ा या रुई तर करके इससे मैयत के दांतों और इसके नथनों को साफ कर देना काफी है। ये बुखारी की रिवायत है, क्योंकि नाक या मुंह में पानी डालने से खतरा है कि पानी जिस्म में जाएगा तो पता नहीं किधर से निकलेगा, वो सब बंद तो खुल गए हैं ना, तो लिहाजा बस गीला गीला कर दें तो भी ठीक है। अब दोनों कानों और नाक में साफ रुई लगा दी जाएगी, यानी जब सफाई कर दी तो गोया कि वो होल्स बंद कर दिए जाएंगे ताकि गुसल के दौरान पानी अंदर दाखिल ना हो, बाद में इस रुई को निकाल दिया जाएगा। साबुन के झाग या शैम्पू से सर के बाल और दाढ़ी को आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर कर धोया जाएगा। बाल पीछे डालकर इस तरह साबुन डाला जाएगा या पानी के पानी पीछे से पीछे चारपाई के नीचे से गुजर जाए और बाल साफ हो जाए। तमाम गुसल कपड़े के नीचे से हाथ डालकर दिया जाए। मुस्तहब यह है कि हाथ पर कपड़े का लिफाफा पहनना हो, खास तौर पर हदूद सतर पर, न किसी की नजर पड़नी चाहिए और न ही हाथ से मस होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली अपनी रान नंगी ना करो, ना ही किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान देखो। रान कहते हैं थाइस को, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के पास होती है जगह। फिर पहले मैयत के जिस्म के सामने वाले हिस्सों को धोया जाएगा, यानी सबसे पहले वजू किया फिर उसके बाद बाल धो दिए, अब नीचे जिस्म की बारी है तो सामने के हिस्सों को धोया जाएगा, यानी जो फ्रंट पार्ट होता है, गर्दन के दाई तरफ से लेकर दाएं पांव तक, और फिर बाएं पांव के बल हल्की सी करवट मोड़कर दाई जानिब का पिछला हिस्सा धोया जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि दाया साइड पहले ऊपर वाली धोई जाएगी, फिर मोड़ के तो दाई साइड का नीचे का हिस्सा धोया जाएगा, फिर इसी तरह ऊपर से बाई तरफ पानी डाला जाएगा, फिर करवट दिलाकर बैक साइड बाई साइड की धोई जाएगी, और गुसल ताक दफा दिया जाएगा, यानी ऑड मल्टीपल्स में। आखिरी बार गुसल देने के लिए पानी में काफूर डालना मसनून है। काफूर ना मिले तो कोई भी खुशबू पानी में मिला सकते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो जितना पानी हो, जितना वक्त हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे गुसल जो है वो पूरा होगा। सोचिए जरा, मेरे साथ आपके साथ यही होने वाला है, क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं? अब ये तो हमने एक फिकी तरीका देख लिया ना, जो एक मसनून तरीका था, अब थोड़ा सा इसका स्पिरिचुअल पहलू भी देखते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। जिंदगी में कभी हम वो काम दूसरों से करवाना पसंद नहीं करते जो मरते ही दूसरे हमारे लिए करेंगे। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं दुनिया में जिंदगी में रहते हुए अपने प्यारों में से, मसलन माँ है तो बेटी, इसी तरह बहन, यानी जो करीब के रिश्ते होते हैं ना, जिनका दुख सुख एक होता है, उनके साथ जिंदगी में ये कमिटमेंट कर लें कि मैं मरूंगी तो तुमने नहलाना है। कोशिश करें किसी गैर को कहने की जरूरत ही ना पेश है। बस अब आप देखिए कि हम इतनी 1921 में पढ़ते हैं कि ये ना हुआ तो ये नहीं होगा, मुझे नहलाना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, क्या फर्क हुआ? अब यहाँ चंद लोगों के जहनों में सवाल हो सकते हैं, और वो क्या है कि क्या मैं तैयार हूं अपने लिए? और दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कुछ 19-20 हो भी गई, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये इतना मुश्किल काम है कि कोई नहीं कर सकता? जो नेक लोग हैं ना, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को इस काबिल छोड़ के जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनके ये काम वो कर सके। आप कितने खौफ आता है, किस बात का खौफ है? वही तो है ना जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे। रूह निकली है, बदन तो वही है, तो मरने वाले से डरना नहीं चाहिए। ये मुशरिकों का मिथ है कि रूह आ गई, बदरू हो गई, जिस्म हो गया। इस्लाम इसको मना नहीं करता। आप सोचिए कि इन्हीं के साथ तो हमारी मोहब्बत थी, तो अगर ये दुनिया से चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आप कहते हैं कि हम इसको सीखना चाहते हैं, गुस्ल को, बहुत आसान है। ये जो आपको स्टेप्स दिखाए हैं, और इंशाल्लाह कल कोशिश करके आपको वीडियो भी दिखा देंगे, आप इसको खुद प्रैक्टिकल करें। किस तरह करें? जो कुछ आपको दिए ना, आप इस सेमिनार के होमवर्क के तौर पर घर में छोटे छोटे पुराने कपड़े तो होते ही हैं, वही काटें, उतने ही काटें। इसमें इंशाल्लाह हम इनको वो पूरी डिटेल से लिस्ट भी फोल्डर्स में मेरा ख्याल है देंगे, कि जिसमें हर चीज का साइज और वो क्या, वो कफन की बात कल आएगी तो उसमें बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी गुड़िया गुड़िया या कोई ऐसी कोई लकड़ी का टुकड़ा लें और उसके साथ खेलें। अभी भी वीडियोस हैं, लेकिन हम आपका वक्त ऊपर नहीं लेना चाहते। इंशाल्लाह कुछ आपको और कल जो भी आपके नसीब में होगा दिखाएंगे। तो इस पे खुद अकेले में प्रैक्टिस करें, वो मैनुअल खोल लें जो आपको बताया गया और उसके साथ कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे कि एक दफा करना, दो दफा करना, फिर आप एक दफा घर में अपने बच्चों के सामने ये ट्यूटोरियल कर लें, इंशाल्लाह खौफ निकल जाएगा। डरे नहीं। बास लोग जो ये डर महसूस करते हैं ना कि हमें ये नहीं करना, अब ये गुसल करवाया तो अब इसमें चंद सवाल जहनों में आते हैं कि मैयत को गुसल करवाना, अच्छा क्या फिर उसके बाद आपको खुद भी गुसल करना पड़ेगा? कोई जरूरी नहीं है, कर ले तो पसंदीदा। वजह क्या? नंबर एक, जिस्म से कोई गंदगी की छींट पड़ सकती है। दूसरी बात है कि जब इंसान इस तरह की कैफियत से गुजरता है कि जिसमें बोझ पड़ता है दिल पे, तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए गुसल होता है। लेकिन अब इस वजह से कि घर में जाएंगे गुसल करेंगे और अब आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप अपने साथ रखे कि हमने ये गुसल करना है, पसंदीदा है। लेकिन अगर कर नहीं पा रहे तो नमाज नहीं छोड़नी उसकी वजह से। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन अमूमन लोगों का होता है कि पीरियड्स वाली औरतें करा सकती हैं नहीं, तो मैं इसके जवाब दे देती हूँ कि जो मरने वाली अगर वही पीरियड से हुई तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बाज़ दफ़ा तकद्दुस के नाम पर और इस तरह के नामों पर ऐसे काम कर देते हैं कि जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो अगर किसी जगह ऐसे मामलात हो जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप उसको बुरे शरह सदर के साथ गुसल भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ है कि आपने गुसल करवाया तो मैयत के जिस्म पर कोई ऐब देखा, कोई नक्स देखा, होते हैं, हर एक के हो सकते हैं। ये तो अल्लाह ने लिबास हमारे लिए खूबसूरती का जरिया बना दिया, वरना इंसान के अपने जिस्म में कई ऐब हैं, तो उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जिंदा का जिस तरह राज खोलना है ना, इसी तरह मुर्दा का राज खोलना भी पसंदीदा नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अब कोई गैर मुस्लिम है, या जैसे आप, हम सब नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, वो हमें गुसल दिलवाते हैं, तो क्या वो किफायत करता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बस दफा मैंने देखा है कि जिंदगी भर जो हम कर रहे हैं उस पर हम फिक्र नहीं करते, लेकिन जब मौत आती है तो उस वक्त फिर हम छोटी छोटी चीजों को सामने रखते हैं। अगर किसी की मौत हॉस्पिटल में है, किसी हादसे में हुई है और आप हर मुमकिन कोशिश करके वहां पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखिए कि कई ऐसे लोग हैं कि जिनको मुसलमान नसीब ही नहीं होंगे, तो अगर वो मुसलमानों के तरीके पे उनका गुसल करवा देता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जब हमें मौत आए ना तो हमारा सतर ना खुले, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए आसानियों के मामले करें।